Ladies and gentlemen, it is a great honor and a pleasure for me to be present with you this evening to share with you some of the wisdom of Bhagavad Gita.
मुझे बहुत ही प्रसन्नता है आप सब लोगों के समक्ष यहाँ पर भगवद गीता का जो ज्ञान है वो प्रसारित करने के लिए.
Of course, most of you, if not all of you, are aware of this great scripture spoken by the Supreme Lord Himself 5,000 years ago here in Bharat.
भगवान श्री ने इस जो शास्त्र है जो सब आप सब जानते ही हैं ये 5,000 साल पहले इसको उन्होंने गाए थे.
But to know something and to realize something are two different things.
लेकिन कुछ चीज को जानना और उसका साक्षात्कार करना वो दो अलग बात है.
Because Krishna spoke the Bhagavad Gita in this great country of India, people are meant to actually realize his teachings and spread them all over the world.
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये महान शास्त्र को उच्चारित किए थे इस देश में भारत देश में इसलिए ये हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इसका साक्षात्कार करके सब जगह इसको प्रसारित करें.
As the Western countries are meant to lead the world in material progress, the great country of India is meant to lead the world in spiritual progress.
जैसे पाश्चात्य देश वो आधुनिक प्रगति में आगे है सबको आगे वो नेतृत्व करते हैं इसी तरह भारत का दायित्व है कि वो आध्यात्मिक क्षेत्र में सभी को मार्गदर्शन दे.
So the leaders and the people of this great country are responsible for keeping this great spiritual culture intact.
तो यहाँ के नेता और सभी महान व्यक्ति का दायित्व बनता है कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है और ये जो संस्कृति है उसको सही रखने के लिए भारत के सभी लोगों का ये दायित्व बनता है.
Therefore, it is the responsibility of every Hindu who was born in this country to read this book every day, put it into practice, and become realized devotees of Bhagavan Shri Krishna.
तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने भारत में जन्म लिया है जो हिंदू है उसका कर्तव्य है कि ये भगवद गीता शास्त्र का अध्ययन करे और इसका साक्षात्कार करे.
Unfortunately, I see in this beloved country of India that people are more interested in reading the newspaper than they are Bhagavad Gita.
लेकिन दुर्भाग्य से मैं देख रहा हूँ कि भारत के लोगों को ज्यादा रुचि है अखबार पढ़ने में गीता से.
This will do little good for you, very little good for the country, and this will do little good for the world.
इससे बहुत ही कम अच्छा होगा आपके लिए देश के लिए और विश्व के लिए.
Of course, it is a great study, the Bhagavad Gita. There are 700 verses.
वैसे भगवद गीता में 700 श्लोक है तो बहुत इसकी बड़ी पढ़ाई है.
At least, those of you who are born in India should be aware of some of the key verses or some of the most important verses of Bhagavad Gita.
जो आप लोग भारत में जन्म लिए हैं कम से कम जो गीता के मुख्य श्लोक है वो आप सबको जानना चाहिए.
For example, one of the most popular verses in this great book is Sarva Dharmam Paricchaya Mamekam Saranam Raja Aham Tam Sarva Papebhyo Mokshasi Mahasuchaha. Every Hindu should have this verse on the tip of their tongue.
तो प्रत्येक जो भारतीय है उसको ये कम से कम जो सबसे प्रसिद्ध श्लोक है सर्व धर्मान परित्याज्य इसको जानना चाहिए और उसके मुखारविंद में होना चाहिए.
And understand its meaning.
और उसका जो मतलब है वो सही तरीके से तत्वत रूप से समझे.
What is the translation of this great verse?
इसका अनुवाद क्या है इस श्लोक का.
Krishna says, just abandon all varieties of dharma and surrender unto me, I will protect you from all sinful reactions.
तो कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्म को त्याग के मुझे शरणागत हो जाओ मैं आपको सभी पाप के फल से बचाऊंगा.
The word dharma can be translated as duty.
तो धर्म को कर्तव्य के रूप में अनुवाद किया जा सकता है.
Being born in this world, we have many obligations, many duties to others.
क्योंकि हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमारी बहुत सारी फर्ज अलग लोगों के प्रति रहती है.
We have a duty to our parents because they raise us from infancy.
क्योंकि हमारे माता पिता हमको बचपन से बड़ा करते हैं तो उनके प्रति हमारा फर्ज है.
We have a duty to society because society provides us so many facilities.
समाज हमको अलग अलग व्यवस्था देता है इसलिए उनके प्रति भी हमारा फर्ज बनता है.
We're also obliged to the devatas, the demigods, because they're engineering God's creation.
और देवताओं के प्रति भी हमारा फर्ज है क्योंकि वो ये पूरा संसार चलाते हैं.
But Krishna is reminding us that our ultimate duty, our ultimate dharma, is to Him, to God.
लेकिन कृष्णा हमें याद दिलवा रहे हैं कि जो हमारा मुख्य और अंतिम धर्म है वो उनको शरणागत होना.
Why?
क्यों?
The Upanishads explain why.
उपनिषद समझाते हैं क्यों.
नित्य नित्य नाम चैतन्य चैतन्य नाम एको बहानाम यो विधिधाति कमाम. That all the eternal living beings, there is one, Eka, who's maintaining, providing for all the other eternal beings.
क्योंकि सभी जो नित्य जीव है पूरे सृष्टि में उसमें एक नित्य जीव है वो बाकी सब नित्य जीव का पोषण करते हैं.
Who is that? भगवान.
वो कौन है? भगवान.
अहम सर्वस्य भवभो मत्स्य सर्वं भवार्थते. Krishna says he's the source of all that is material and all that is spiritual.
Krishna कहते हैं कि वो सभी के स्रोत है भौतिक और आध्यात्मिक से.
So ultimately it is God, Bhagavan, Krishna, who's actually maintaining us.
तो मतलब अंतिम स्थल में हम देख सकते हैं कि भगवान हमारा पोषण करता है सभी रूप से.
And too often in our modern society, we honor our parents, we honor society, we honor even the demigods, but we leave God out of the equation.
लेकिन आधुनिक समाज में हम आदर देते हैं माता पिता को, देश को, समाज को और भगवान को भूल जाते हैं.
We're thankful to science and technology providing so many nice things in modern society.
और आधुनिक समाज में जो साइंस टेक्नोलॉजी हमको दे रहे हैं उसके प्रति हम बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं.
We become so attracted by this material progress that we forget about God. We don't even read the Gita anymore. We don't offer our prayers. We don't offer our food. We don't go to the temple anymore.
ये जो आधुनिक प्रगति है उससे हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं. हम भगवान का ये शास्त्र गीता नहीं पढ़ते हैं, भगवान को पुष्प भोग आदि अर्पण नहीं करते हैं.
There's no harm with material progress. It's okay, it's fine.
भौतिक प्रगति से कोई विशेष नुकसान नहीं है, ठीक है.
But we should not forget where it is all coming from.
लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब कहाँ से आ रहा है.
It's not coming from the sciences, it's actually coming from the Supreme Lord Himself, who gives the intelligence to the scientists to create it so we can live a peaceful, comfortable life.
तो वैज्ञानिक लोग से सब कुछ नहीं आ रहा है बल्कि भगवान वैज्ञानिक लोगों को बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो आता है.
Actually, everything in this world is a gift of God.
इस संसार में सब कुछ भगवान का तोहफा है.
We tend to forget.
ये हम भूल जाते हैं.
Because to be a conditioned soul in this world means that we are prone to forgetfulness.
बद्ध जीव का मतलब है कि वो भूल जाता है.
So the Lord has to come to remind us, the rishis have to remind us, the yogis, the sages, they have to remind us of these things.
इसलिए भगवान ऋषि आदि हमें ये बार बार याद दिलवाते हैं.
That the earth we stand on is provided by Bhagavan.
कि जो धरती जिस पे हम खड़े हैं वो भगवान ने दी है.
That the air that we breathe is not created by scientists, it's created by God.
जो वायु है वो वैज्ञानिक लोगों ने नहीं बनाई है, वो भगवान ने बनाया है.
That the food that we eat is not produced in supermarkets, it's produced in the land by the mercy of the Supreme God who provides the rains to grow them.
तो जो खाना हम सुपरमार्केट में से लेना जाते हैं वो ये साइंटिस्ट लोग आदि नहीं दे रहे हैं बल्कि भगवान ने दिया है, जो वर्षा देते हैं, जो धरती से उत्पन्न होता है आहार.
In so many ways we are totally 100% dependent on the mercy of Krishna.
बहुत सारे रूप से हम 100% भगवान पे निर्भर हैं.
Recognizing this fact, we should thank the Supreme Lord.
ये ज्ञात होने पर हमें भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए.
Isn't it? If someone provides so many things for you, you have to say thank you. That is polite. That is culture.
तो कोई आपको बहुत सारी चीज देता है, तो आप उसको थैंक यू कहते हैं. तो ये शिष्टाचार है.
When I was a young boy, my mother was trying to train me in culture. She said, whenever you receive something from anybody, my son, you should say thank you.
तो मेरी माता ने मुझे ये बचपन में शिक्षा दिया कि मेरे पुत्र जब भी कोई आपको कोई वस्तु देता है तो आपको थैंक यू कहना चाहिए.
And whenever I didn't say thank you to someone who gave me a gift, my mother would slap me on the head. Say thank you.
तो जब भी मैं थैंक यू नहीं कहता था जब कोई मुझे कुछ देता था तो मेरी माता मुझे थोड़ा सा फटकारती थी.
And she said a very interesting thing to me.
और बहुत ही विशेष बात मुझे कही.
She said, son, if you don't say thank you when someone gives you a gift, don't expect that person to give you another gift.
तो उन्होंने कहा कि अगर आप थैंक यू नहीं कहेंगे यदि कोई आपको कुछ देगा तोहफा तो आपको वो फिर से तोहफा नहीं देगा.
So what is the process in our Vedic culture, our Indian culture, for acknowledging these gifts of God and thanking the Lord for everything He provides for us?
तो जो वैदिक संस्कृति में तरीका क्या है, प्रणाली क्या है कि हम कृतज्ञता व्यक्त कर सके भगवान को जो हमको ये सब कुछ प्रदान करते हैं.
It's called yagya.
उसको यज्ञ कहते हैं.
What is yagya?
यज्ञ का मतलब क्या है?
Yagya is acknowledging the gifts of the devatas who receive their potency to supply us the basic needs of life from the Supreme Lord Bhagavan Krishna himself.
यज्ञ का मतलब है कि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं देवताओं को जिनको शक्ति प्रदान करते हैं भगवान कृष्ण स्वयं.
That is yagya.
इसका मतलब यज्ञ है.
Yagya is a very important and integral part of human society.
मानव समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये यज्ञ.
What is yagya? Yagya by Vishnu. Really, yagya is just saying thank you to the Supreme Lord, acknowledging the gifts of God. That is yagya.
यज्ञ का मतलब है कि हम आदर व्यक्त करते हैं भगवान को.
Krishna says in the Gita.
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं.
In the beginning of creation, I sent forth generations of men and demigods.
सृष्टि की शुरुआत में मैंने मानव को और देवताओं को भेजा.
And blessed them that by the performance of yagya or sacrifice.
और उन आशीर्वाद दिया कि यज्ञ करने के द्वारा
everything that you need for material and spiritual progress will be provided for you.
जो भी भौतिक आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप चाहते हैं यज्ञ के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा.
Acknowledging God's grace and thanking Him is the actual key to material progress.
भगवान का ये कृतज्ञता व्यक्त करना और स्वीकारना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चाबी है मनुष्य जीवन की प्रगति के लिए.
We're thinking by the sweat of our brow, by hard work, by our intelligence, human society is making progress.
हम लोग सोचते हैं कि हमारे पसीना से, हमारी मेहनत से ये मानव समाज आगे बढ़ रहा है.
But unless the Lord blesses our endeavors in this world, nothing can be successful.
जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तो कोई भी चीज सफल नहीं हो सकती है इस संसार में.
In the English language, we have a saying, probably from the Christian religion, that not a blade of grass moves without the will of God.
अंग्रेजी में कहावत है, विशेष करके क्रिश्चियन से है, कि एक घास का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना हिलता नहीं है.
So we must acknowledge these gifts of God by performing the yagyas.
तो ये सभी तोहफा भगवान सब कुछ आवश्यकता देते हैं उनके लिए हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए यज्ञ करके.
If we don't, we can expect that the resources of material nature will gradually dry up.
और हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, कृतज्ञता नहीं व्यक्त करेंगे तो धीरे धीरे सभी आवश्यकता कमी होती जाएगी.
And is that not happening now?
और अभी ऐसा नहीं हो रहा है.
We have so many environmental issues, so many environmental problems because we are not acknowledging the Supreme Personality of Godhead.
क्योंकि हम भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे इसलिए इतनी सारी समस्या बढ़ रही है.
Our forefathers were very careful to always make sure the Agnihotra sacrifices were going on.
हमारे परदादा हमेशा बहुत ही सतर्क रहते थे कि अग्निहोत्र यज्ञ होते रहे.
For example, 5,000 years ago, the emperor of the world, the whole world, not just India, the whole world, was Maharaj Yudhishthir.
तो महाराज युधिष्ठिर जो सम्राट थे पूरे विश्व के, तो उन्होंने ये किया.
He was not just a king, he was also a saintly person.
वो केवल एक राजा नहीं थे, वो एक संत पुरुष थे.
In our ancient Vedic culture, the leaders were called Rajrishi. Rajrishi means they were kings, but they were also saintly persons sitting on the throne.
हमारी वैदिक संस्कृति में उनको राजऋषि कहते थे, जो राजा भी है, लेकिन वो बहुत ही संत पुरुष है, जो आसन राज आसन पे बैठे.
And Maharaj Yudhishthir ruled his kingdom not by some fertile ideas he got in his brain, but he ruled his citizens following the instructions of the Supreme Lord in books like the Bhagavad Gita.
और महाराज युधिष्ठिर ने प्रजा का संचालन किया नहीं अपनी दिमाग और बुद्धि से, बल्कि शास्त्र भगवत गीता के द्वारा.
And it said in his kingdom, like the kingdom of Lord Ram, that the citizens were completely happy under the rule of such kings.
और कहा जाता है जैसे कि राम राज्य के जैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सभी प्रजा बहुत ही सुखी थी.
There was an abundance of food available for everyone.
सबके लिए बहुत ही आहार था.
There was an abundance of clean water for everyone.
शुद्ध जल था सबके लिए.
There was plenty of fresh air. There was plenty of room for everyone to live.
शुद्ध वायु और जगह थी सबके लिए जीने के लिए.
In fact, the sages have said that under the rule of kings like Yudhishthir, the cows were protected, and the cows felt so satisfied they would flood the earth with their milk.
ऐसे कहा जाता है कि जैसे संत पुरुष जैसे महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा हो, तो जो गाय है वो इतना दूध से पूरा बह देती थी धरती को.
Unfortunately, outside of the great state of Gujarat, where you are protecting the cows, Gomata, other parts of India, they're killing the cow.
गुजरात राज्य में गाय की रक्षा है, लेकिन दूसरे राज्यों में भारत में उसका कत्ल होते रहा हो रहा है.
This is the greatest sin.
ये सबसे बड़ा पाप है.
Because the cow is God's favorite animal.
क्योंकि गाय बहुत ही प्रिय है भगवान को.
Two things are dear to God in this world: the Brahmanas who preach the absolute truth, and the cows who give us dude nice milk.
भगवान को दो बहुत ही प्रिय है, एक तो ब्राह्मण जो ये ज्ञान प्रदान करते हैं, और गाय जो शुद्ध दूध देती है.
शास्त्र says, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. A government that does not protect the cows is a doomed government.
जो सरकार गाय की रक्षा नहीं करती है उसका निश्चित पतन हो जाएगा.
It was also explained that during the time of Maharaj Yudhishthir, the weather was perfect. It would be nice and warm during the day, and it would rain only at night when people were sleeping.
Maharaj Yudhishthir ke samay din mein acha sa vayu paryavaran tha, dhoop tha, aur keval raat mein varsha girti thi.
So what was the secret for success for these politicians and their governments? The kings were Rajarishis. They knew the science of performing yajna to say thank you to Bhagavan.
तो इन लोगों का सफलता का रहस्य क्या था इन राज ऋषियों का, कि वो कृतज्ञता व्यक्त करते थे भगवान को यज्ञ के द्वारा.
It's all we have to do is thank the Supreme Lord.
हमको केवल यही करना है, भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना है.
No harm in embracing the modernization of India. That's fine. But don't forget to say, thank you, Krishna, yajna vai Vishnu.
कोई नुकसान नहीं है भारत आधुनिक प्रगति की ओर बढ़े, लेकिन भगवान कृष्ण को थैंक यू जरूर कहना चाहिए.
But as I travel to the great country of Bharat, unfortunately, I do not see any more the sacrificial fire with the
Brahmana is chanting the mantras, and the devata is coming down to accept those offerings on behalf of the Lord.
लेकिन जैसे मैं भारत में भ्रमण कर रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं देख रहा हूँ कि यज्ञ हो रहे हैं और उसमें आहुति दे जा रही है और देवता उन आहुतियों को स्वीकार रहे हैं।
People are not interested in doing yajna. They're only interested in Bollywood. They're only interested in politics. They're only interested in cricket. They're only interested in iPods and so many modern gadgets. We become mesmerized by Western culture. We forgot the simple art of performing the Agnihotra, the sacrifice to thank Krishna.
तो सभी लोग भूल जा रहे हैं ये यज्ञ करना और ये मोहित हो जा रहे हैं बॉलीवुड से और ये सभी पाश्चात्य वस्तुओं से.
And the young people in particular, they are thinking, oh, these things are only for old people who are sentimental and irrational. They're thinking like this.
और जो युवा पीढ़ी है वो सोच रहे हैं कि ये जो यज्ञ है वो केवल वृद्ध लोगों के लिए है जो इस प्रकार से भावुक है.
This is the greatest calamity that has ever befallen this earth planet.
ये सबसे बड़ी दुर्दशा है जो ये संसार में अभी हो रही है.
Because if the sacrificial fire goes out in India, what hope does the world have for genuine spiritual culture and spiritual progress?
यदि भारत की ही यज्ञ की अग्नि भूज जाती है तो क्या भविष्य है ये विश्व का?
There is no other culture in the world, because I have traveled the world extensively for the last 40 years, that can explain to you exactly what is the Atma, the soul within the body.
विश्व में कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है भारत जैसी जहाँ पर आत्मज्ञान प्रसारित किया जा रहा है और मैं 40 साल से पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा हूँ.
There is no other culture in the world that can explain the science of devotional service, whereby one gives up sinful activities and engages in devotional activities to God.
कोई भी ऐसी संस्कृति विश्व में नहीं है जहाँ पर पापाचार छोड़ा जाता है और भक्ति सेवा सिखाया जाता है.
There's no other culture in the world that has such a clear, detailed understanding of the personality of God.
कोई भी ऐसा संस्कृति नहीं है जहाँ पर इतना विस्तारित रूप से भगवान के बारे में ज्ञान दिया जाता है.
In Western countries, with all due respect, people believe in God.
विदेश में पाश्चात्य देश में सभी लोग भगवान को मानते हैं.
But if you ask them, who is God? They don't know what to say. They say, oh, he's God. No, who is God? He's God.
लेकिन आप उनको पूछेंगे कि भगवान कौन है तो वो उनको मालूम नहीं है. वो कहते हैं भगवान है, लेकिन वो विशेष रूप से नहीं जानते हैं कि वो भगवान कौन है.
But how can you love someone you don't know?
लेकिन कैसे आप प्रेम कर सकते हैं किसी से जिनको आप जानते ही नहीं हैं?
And this is the beauty of your culture, the beauty of your history, the beauty of your philosophy. God is described in a very beautiful way. We know how the form of God, we know his activities, we know his devotees, we know his abode. It's described in great detail. You can easily fall in love, bhakti, with Krishna.
यही तो सुंदरता है आपकी संस्कृति के, जिसमें इतना विस्तारित रूप से भगवान का सुंदर रूप, नाम, गुण, लीला आदि बताया है कि ये सब सुन के आप बहुत आसानी से कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति के द्वारा प्रसारित कर सकते हैं.
This is India's gift to the world, and it's the most valuable, it's more valuable than IT, information technology.
ये भारत का सबसे बड़ा तोहफा है जो आईटी से भी बड़ा है.
So, make material progress, but keep your spiritual culture.
तो भौतिक प्रगति कीजिए लेकिन आपकी जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको भी रखिए.
Teach your children to follow the culture of your forefathers.
आपके बच्चों को आपके परदादा की संस्कृति सिखाइए.
And what yajnas will we perform? How will we say thank you to God in this age? There's no more sacrificial fires.
और इस युग में कैसे हम यज्ञ करेंगे? अभी और कोई अग्नि यज्ञ नहीं है.
Understanding the nature of Kali Yuga and how people are so distracted and so busy, the Lord has introduced a very simple yajna that we can all perform in this age and achieve the same result as our forefathers.
कलयुग की स्थिति देखकर और लोगों की सामर्थ्य देखकर भगवान ने बहुत आसान तरीका दिया है जिसके द्वारा हम इस युग में यज्ञ कर सकते हैं.
It may not be possible in every household to perform the Agnihotra, the fire sacrifice.
तो सभी घर में अग्निहोत्र का यज्ञ करने का संभावना नहीं होगा.
So Lord Krishna has given a specific yajna for the people of Kali Yuga.
तो कलयुग के लोग के लिए भगवान ने एक विशेष यज्ञ पद्धति दी है.
Not just for Indians, but people from any country around the world.
केवल भारत के लिए नहीं लेकिन विश्व में सभी देशों के लिए.
Because Krishna is not the god of the Hindus.
क्योंकि कृष्णा हिंदू लोगों के भगवान केवल नहीं है.
He said he's the seed-giving father of every creature in this world.
वो भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो बीज देते हैं सभी लोगों के लिए.
Everyone is a devotee of Krishna. Some know it, some don't.
सभी भगवान के भक्त हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं.
So everyone can take part in the yajna for this age and Kali Yuga. What is that yajna?
तो सब लोग भाग ले सकते हैं जो इस युग के लिए यज्ञ है. वो यज्ञ क्या है?
It's described in the Brihad Narayan Purana.
और इसको बताया बृहद नारायण पुराण में.
हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम् कुलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा. That in this age of Kali, the most easiest and sublime way to perform yajna is simply to chant or sing the name of Krishna.
कि इस युग में बहुत ही आसान तरीका है कि यज्ञ हम कर सकते हैं भगवान का नाम गाकर.
नाश्तेव नाश्तेव नाश्तेव. कृष्ण सेड देयर इज नो अदर वे नो अदर वे नो अदर वे टू प्लीज मी इन द एज ऑफ काली. नथिंग इज एज गुड एज सिंगिंग माय नेम विद लव एंड डिवोशन.
तो भगवान तीन बार कहते हैं कि और कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं है और कोई तरीका नहीं है जिससे मुझे प्रसन्न किया जा सकता है. इस युग में बहुत ही आसान तरीका है भगवान का नाम लेना प्रेम और भक्ति के साथ.
एनी नेम ऑफ गॉड विल डू.
कोई भी भगवान का नाम चलेगा.
ही हैव सो मेनी नेम्स.
उनके इतने सारे नाम हैं.
यू चूज योर फेवरेट नेम ऑफ भगवान.
आपका पसंद हुआ किया हुआ वो आप चुनिए.
वी लाइक टू सिंग दीज नेम्स. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. As they were introduced by the Yuga Avatar, the incarnation of Krishna in this age, Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Sri Chaitanya Mahaprabhu, जो इस युग के अवतार हैं, उन्होंने ये जो पद्धति दी है, जो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने का, वो हम स्वीकार करते हैं.
Actually, Lord Chaitanya, who appeared 500 years ago, predicted that this Nam Yajna, this Yuga Dharma, would one day spread to every town and village of the world.
और भविष्यवाणी की थी चैतन्य महाप्रभु ने कि जो ये यज्ञ है नाम यज्ञ वो प्रत्येक नगर आदि ग्राम में इसका प्रसारण हो जाएगा.
And that began in earnest when our beloved spiritual master, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, set sail from India in 1965 and went to the western countries and chanted this mantra all over the world.
और 1965 में हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी वो यहाँ से जलदूता में गए विदेश में और ये महामंत्र का प्रसारण उन्होंने शुरुआत किया पूरे विश्व में फैलाने का.
And anywhere in the world where you see this Nam Yajna going on, you see material prosperity and you see spiritual progress as well.
तो जहाँ भी आप ये नाम यज्ञ देखेंगे तो वहाँ प्रगति भौतिक प्रगति भी देखेंगे और आध्यात्मिक प्रगति भी देखेंगे.
And therefore today you see on the stage devotees, Western devotees from 14 different countries who have embraced with all their hearts this beautiful Indian or Vedic culture.
इसलिए आप देख रहे हैं स्टेज पे कि 14 देशों से विदेशों से 14 देशों से लोग आए हैं भक्त आए हैं और उन्होंने आलिंगन किया है ये वैदिक संस्कृति को ये भारत की संस्कृति को.
And in coming to India, we feel like we have come back home.
और भारत आने पर हमें ऐसा लगता है कि हम घर लौट आए हैं.
This is the land of Dharma, this is the land of Krishna. So Please accept us as your adopted sons and daughters.
तो इस ये जो भगवान की भूमि है भारत भूमि तो हमें स्वीकार कीजिए आपके पुत्र के रूप में.
Thank you.
धन्यवाद.